ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। लोकतांत्रिक मूल्य मान्यताओं और समाज विकास की गति के विपरीत सरकार कोई भी कानून नहीं बनाएगी, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की प्रतिबद्धता। हिंद कुश हिमालय क्षेत्र के देशों की संसदीय बैठक कल से काठमांडू में होगी शुरू। जलवायु परिवर्तन, वायु प्रदूषण और वातावरण के विषय में विज्ञों के बीच होगा विमर्श। निसंतान उपचार केंद्रों के नियमन और उपचार सेवा पारदर्शी बनाने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने निसंतान व्यवस्थापन सेवा संचालन संबंधी मापदंड 2082 को किया स्वीकृत। और कनाडा में वेतन वृद्धि की मांग को लेकर हड़ताल पर गए 10,000 से अधिक फ्लाइट अटेंडेंट वापस लौटे काम पर। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि लोकतांत्रिक मूल्य मान्यता और समाज विकास की गति के विपरीत सरकार कोई भी कानून नहीं बनाएगी। मुल्की संहिता दिवस के अवसर पर कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्रालय द्वारा आज सिंह दरबार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ओली ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि कानून क्रियान्वयन के क्रम में महसूस हुई समस्याओं और कठिनाइयों के समाधान के लिए कानून संशोधित होते आए हैं, लेकिन सामाजिक न्याय समानता जैसी लोकतांत्रिक मान्यताओं के विपरीत कोई भी कानून नहीं बनेगा। इस बात का जिक्र करते हुए कि प्रचलित कानून में विवाह की उम्र, बहुविवाह जैसे पारिवारिक संबंधों से जुड़े कुछ प्रावधानों के क्रियान्वयन में समस्या आने के बाद उनका संशोधन के प्रयास होने पर बहुविवाह को मान्यता दिए जाने की अफवाह फैला दी गई है, प्रधानमंत्री ने सभी से ऐसी अफवाहों पर भरोसा न करने का आग्रह किया। मौके पर प्रधान न्यायाधीश प्रकाश मान सिंह राउत ने भी अपने विचार रखे थे। औचित्यहीन लगने वाली संस्थाओं को खारिज करने, मर्ज करने या प्रदेश और स्थानीय तहों को हस्तांतरित करने संबंध में उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोग की बैठक में विचार विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की अध्यक्षता में हुई आयोग की बैठक ने इस संबंध में विस्तृत अध्ययन कर ठोस प्रस्ताव लाने की जिम्मेदारी आयोग की क्रियान्वयन समिति को सौंपी है। बता दें कि आयोग में नेपाल सरकार के मुख्य सचिव एक नारायण अर्याल के संयोजकत्व में क्रियान्वयन समिति है। आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री ओली ने सकारात्मक परिणाम लाने के विकल्प सहित 15 दिनों के अंदर प्रतिवेदन सहित का प्रस्ताव लाने का समिति को निर्देश किया। नेपाल के 2 दिवसीय दौरे पर आज काठमांडू आए भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित विभिन्न दलों के नेताओं के साथ शिष्टाचार भेंट की। परराष्ट्र सचिव अमृत बहादुर राय के आमंत्रण पर नेपाल आए भारतीय विदेश सचिव मिश्री ने प्रधानमंत्री ओली के साथ प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय सिंह दरबार में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मिश्री ने प्रधानमंत्री ओली को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से औपचारिक भारत भ्रमण का निमंत्रण दिया। ये जानकारी प्रधानमंत्री के मुख्य सलाहकार विष्णु रिमाल ने दी। इसी तरह राष्ट्रपति रामचंद्र पोडेल से विदेश सचिव मिश्री ने राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में भेंट की थी। इसके अलावा उन्होंने परराष्ट्र मंत्री डॉ आरजू राणा देउवा, नेपाली कांग्रेस के सभापति शेर बहादुर देउवा और नेकपा माओवादी केन्द्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड से भी अलग अलग भेंट वार्ताएं की। हिंद कुश हिमालय क्षेत्र में आने वाले देशों के संसदों के बीच साझा धारणा, संवाद और समन्वय में हिंद कुश हिमालय संसदीय बैठक कल से शुरू होने जा रही है। संघीय संसद कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति के आयोजन में भाद्र 2 और 3 गते को काठमांडू में होने जा रही बैठक की तैयारी पूरी हो चुकने की जानकारी समिति ने दी है। अंतर्राष्ट्रीय एकीकृत पर्वतीय विकास केंद्र ईसी मोड के प्राविधिक सहयोग में आयोजित होने जा रही बैठक में हिंद कुश हिमालय क्षेत्र के नेपाल सहित भारत, चीन, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार और पाकिस्तान के संसदीय प्रतिनिधियों की सहभागिता होगी। बैठक में इनके अलावा जलवायु परिवर्तन, वायु प्रदूषण और वातावरण के विषय से संबंधित विज्ञों की सहभागिता रहेगी और इन मुद्दों पर गहन विचार विमर्श होगा। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय ने निसंतान उपचार IVF सेवा को व्यवस्थित और नियमित करने के लिए निसंतान व्यवस्थापन सेवा संचालन संबंधी मापदंड 2082 को स्वीकृत किया है। इस मापदंड के तहत नेपाल में निसंतान उपचार सेवा और इसके लिए आवश्यक प्रयोगशाला, जनशक्ति व्यवस्थापन के साथ ही संवेदनशील माने गए शुक्रकीट और अंडादान की प्रक्रिया और अधिक व्यवस्थित होगी। ये जानकारी मंत्रालय के गुणवत्ता मापन तथा नियमन महाशाखा प्रमुख डॉ सरोज शर्मा ने दी। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा के छ हाल खबर, पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु, हामी जस्ताको लागि एनटिसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *14## डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने भाषागत समावेशिता ने संघीयता की भावनाओं को संबोधित किया है की बात कही। 31वें तामांग भाषा प्रसारण दिवस के अवसर पर तामांग पत्रकार संघ ने आज काठमांडू में आयोजित तामांग मीडिया अवार्ड कार्यक्रम में संचार मंत्री गुरुंग ने ये बात कही। इस बात का जिक्र करते हुए कि गोरखा पत्र से 45, रेडियो नेपाल से 26 और रासस से 3 मातृभाषाओं में समाचार संप्रेषण किए जा रहे हैं, मंत्री गुरुंग ने कहा कि संचार माध्यमों में भाषागत समावेशिता प्रवर्धन को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाया गया है। मौके पर उन्होंने ये भी बताया कि आश्विन 3 गते संविधान दिवस के दिन से एनटीवी वर्ल्ड का प्रसारण भी शुरू किया जाएगा। गृहमंत्री रमेश लेखक ने राष्ट्र के हित और आम नागरिकों को सुविधा होने के हिसाब से काम करने का माथहत के कर्मचारियों को निर्देश किया है। आज मंत्रालय में आर्थिक वर्ष 2082-83 के लिए गृह सचिव एवं संगठन प्रमुख, महाशाखा और विभागीय प्रमुखों के साथ कार्य संपादन समझौता करने के दौरान उन्होंने कहा कि ड्रग्स, सड़क दुर्घटना, आत्महत्या और साइबर अपराध नियंत्रण में उल्लेख्य काम हुए हैं, लेकिन परिणाम आने में थोड़ा सा समय लगेगा। बर्दिया जिले में नवजात शिशुओं में भी स्क्रब टाइफस रोग देखा जाने लगा है। पुआल, झारपात और वन जंगल में होने वाले छोटे छोटे कीड़ों के काटने से बुखार, सिरदर्द, मितली जैसे लक्षण पाए गए हैं। बता दें कि अभी बर्दिया के गुलरिया अस्पताल में 15 नवजात शिशुओं का स्क्रब टाइफस का इलाज चल रहा है। ये जानकारी हमारे संवाददाता ने दी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। कनाडा में वेतन वृद्धि की मांग को लेकर हड़ताल पर गए 10,000 से अधिक फ्लाइट अटेंडेंट काम पर वापस लौट आए हैं और आज से काम शुरू कर देंगे। एयर कनाडा ने कहा है कि सरकारी हस्तक्षेप के बाद कर्मचारी सहमत हो गए हैं और उड़ानें आज से शुरू होंगी। बता दें कि एयर कनाडा के 10,000 से अधिक फ्लाइट अटेंडेंट शनिवार तड़के हड़ताल पर चले गए, जिसके बाद कंपनी ने अपनी सभी उड़ानें निलंबित कर दी। इस घटनाक्रम से कल शनिवार को दुनिया भर में 1,00,000 से अधिक यात्रियों के प्रभावित होने का अनुमान है। इस बीच कनाडा सरकार ने विमान कंपनी और उसके फ्लाइट अटेंडेंट के संघ पर काम पर लौटने और समझौता करने का दबाव तेज कर दिया था। संघीय रोजगार मंत्री पैटी हसदू ने मामले में सरकारी हस्तक्षेप की घोषणा करते हुए कहा था कि अभी अर्थव्यवस्था को जोखिम में डालने का समय नहीं है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 30.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21.2 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकतांत्रिक मूल्य मान्यताओं और समाज विकास की गति के विपरीत सरकार कोई भी कानून नहीं बनाएगी, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की प्रतिबद्धता। हिंद कुश हिमालय क्षेत्र के देशों की संसदीय बैठक कल से काठमांडू में होगी शुरू। जलवायु परिवर्तन, वायु प्रदूषण और वातावरण के विषय में विज्ञों के बीच होगा विमर्श। निसंतान उपचार केंद्रों के नियमन और उपचार सेवा पारदर्शी बनाने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने निसंतान व्यवस्थापन सेवा संचालन संबंधी मापदंड 2082 को किया स्वीकृत। और कनाडा में वेतन वृद्धि की मांग को लेकर हड़ताल पर गए 10,000 से अधिक फ्लाइट अटेंडेंट वापस लौटे काम पर। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।